लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि विश्व की समस्त ख्रिस्तीय पल्लियां नैतिक मूल्यों के प्रसार और उदारतापूर्ण कार्यों के आदर्श सिद्ध हों। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं एवं अड़चनों को जीवन से दूर रखें। मिस्र और बाबुल के लोग उसके नागरिक कहलाएंगे, फिलिस्तिया, तीरुस और इथियोपिया सियों को अपना जन्म स्थान मानेंगे। सब लोग सियों को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि सब के सब वहीं उत्पन्न हुए हैं। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखता है। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 87वें भजन के अंतिम पद। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत विगत सप्ताह हमने इसी भजन की व्याख्या प्रस्तुत की थी। इस बात का हम सिंहावलोकन कर चुके हैं कि स्तोत्र ग्रंथ का 87वां भजन कोराह के पुत्रों का गीत है जो सियों पर्वत का बखान करते हैं। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल में एक स्मारक रूप में सियों का विचार किया गया है और इसे परम पावन ईश्वर का निवास स्थान तथा दाऊद के गढ़ रूप में वर्णित किया गया है। सियों पर्वत वही पहाड़ी है जिस पर दाऊद ने अपना गढ़ बनवाया था। यह है प्रभु का नगर जो दाऊद के वंशजों के लिए स्वयं प्रभु द्वारा सुरक्षित रखा गया था। इस तथ्य पर भी हम दृष्टिपात कर चुके हैं कि सियों ईश्वर के शहर यानी कि जेरूसलेम का पर्याय है। यही है ईश्वर द्वारा अपनी प्रजा के लिए चुना गया शहर जो प्राचीन काल से इसराइलियों तथा अब एक ईश्वर में विश्वास करने वाले विश्व के तमाम लोगों के लिए पवित्र शहर तथा तीर्थ यात्रा का लक्ष्य बन गया है। यही है वह नगर जिसकी आधारशिला मनुष्यों द्वारा नहीं अपितु स्वयं पिता ईश्वर द्वारा रखी गई थी। सियों पर्वत और जेरूसलेम शहर तथा उसके आस पड़ोस के स्थान ही वे पावन स्थल बने जहां ईश्वर के इकलौते पुत्र मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त ने जन्म लिया, अपनी प्रेरिताई की, दुख सहा, मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठे। इसीलिए 87वें भजन का रचयिता कहता है, मिस्र और बाबुल के लोग उसके नागरिक कहलाएंगे, फिलिस्तिया, तीरुस और इथियोपिया सियों को अपना जन्म स्थान मानेंगे। प्रभु ईश्वर ने इसराइल की अन्य जातियों के साथ साथ अत्याचार करने वाले मिस्र और बाबुल को भी शरण प्रदान की, क्योंकि ईश्वर दयालु हैं। उनकी दया और उनका प्यार असीम है। ईश्वर सबको क्षमा कर देते, सबको नवजीवन जीने के लिए आमंत्रित करते हैं।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे।
अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 88वें भजन पर दृष्टिपात करें। 18 पदों वाला 88वां भजन घोर संकट में की गई कोराह के पुत्रों की प्रार्थना है। इस भजन के प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। प्रभु मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मैं दिन रात तुझे पुकारता हूँ, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं कष्टों से घिरा हुआ हूँ, मैं अधोलोक के द्वार पर पहुँचा हूँ। श्रोताओ, जैसा कि हमने पहले कहा, पहले पद से लेकर अंतिम पद तक यह भजन संकट में की गई प्रार्थना है। भजनकार विलाप करता है, वह शिकायत करता है, अपने मन की परेशानियों का उल्लेख करता है। उसका मन भारी है और उसकी आत्मा दुखी, और अपनी इन्हीं व्यथाओं को उसने 88वें भजन में अभिव्यक्ति प्रदान की है। वह अपने पापों की याद कर भयभीत होता है, उसे ईश्वर के कोप का डर है। इस भजन को पश्चाताप के भजनों में से एक माना जाता है। ठीक ही तो है, व्यक्ति गलती करता है और गलती करने के बाद भय उसके दिल में समा जाता है, बाद में वह अपने किए पर पछताता भी है, स्वतः को ईश्वर के सम्मुख रख विनती करता है कि प्रभु उसके पाप क्षमा कर उसके दिल का बोझ हल्का कर दें। वस्तुतः यही है सही दिशा, यही है सही चैनल जो मनुष्य को सुख और आनंद प्रदान करता तथा उसे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। प्रभु से भजनकार कहता है, ईश्वर मैं कष्टों से घिरा हुआ हूं, मैं अधोलोक के द्वार पर पहुंचा हूं। प्रार्थना करने के साथ साथ भजनकार प्रभु से कहता है कि वह कष्टों से घिरा हुआ है और अधोलोक के द्वार पर पहुंच गया है। अधोलोक का अर्थ है मृत्यु, किंतु 88वें भजन में यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस मृत्यु की भजनकार बात कर रहा था, वह मृत्यु केवल शारीरिक मृत्यु नहीं थी, वस्तुतः उसे आत्मा के मर जाने का डर था। यह इसी प्रकार है जिस प्रकार प्रभु येसु ख्रीस्त यह घोषित करते हैं कि मर जाने वालों को अपने मृतकों को दफनाने दो, या फिर इस प्रकार जब स्वयं प्रभु येसु ख्रीस्त ने गेत्समनी की बारी में क्रूस मरण से पूर्व प्रार्थना कर कहा था कि उनकी आत्मा मरने को थी। श्रोताओ, 88वें भजन के विषय में बाइबल आचार्यों का मानना है कि भजनकार कनानी था जिसने ईश प्रजा में प्रवेश कर लिया था, किंतु ईश प्रजा को मिली संहिता का उसे कोई ज्ञान नहीं था, अथवा उसे पूरी तरह से वह समझ नहीं पाया था, इसलिए कि संहिता के नियमों पर चलने वाला ईश्वर और पड़ोसी के प्रति वचनबद्ध था। अस्तु, एक अकेला या अलग व्यक्ति होने की उसने स्वतंत्रता खो दी थी। दूसरी ओर आधुनिक अस्तित्ववादी या व्यक्तिवादी वह है जो स्वतः को पूरी तरह से स्वतंत्र समझता है। वह इस भ्रम में पड़ा रहता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने सब कामों को वह बिना किसी की सहायता से कर सकता है, और इसीलिए ईश्वर में विश्वास करते हुए भी वह ईश्वर के नियमों को नहीं मानता। जबकि ईश प्रजा का सदस्य होने के लिए प्राचीन व्यवस्थान के राजाओं के पहले ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 3 और 4 पदों में लिखा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, उसकी विधियों, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा की संहिता में लिखा हुआ है, तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे।
कल करती तोरी नदियाँ यूं कहती,
तू है